बाह्य दृश्य चित्रण का शेष अंश, पृष्ठ 89। गोस्वामी जी के अधिकांश वर्णन पिछले कवियों के ढंग पर शब्द सौंदर्य प्रधान ही है, जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है। जैसे क झरना झरहि सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि केहि पाही, सरनी सरो रुह जल विहग कुजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। ख बेली नव किसलय कुसमित सघन सुजाति, कदमूल जलथल रुह आनित अनबन भाति, मंजुल मंजू बकुल कुल सुरतरु ताल तमाल, कदली कदम्ब सुचंपक पाटल पनस रसाल, सरित सरन सरसी रूह फूले नाना रंग, गुंजत मंजू मधुपगन कुजत विविध विहंग। पिछले कवियों की शैली पर वर्णन करने में भी वे सबसे बड़े चिढ़े हैं। यह चित्रकूट वर्णन देखिए। फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरित छवि वितान की, मंदाकिनी तटिन तीर मंजुल मृग विहग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर सामगान की, मधुकर पीक बरही मुख सुंदर गिरी निर्झर भर, जल कन छन छाह छन प्रभा नभान की, सब ऋतु ऋतुपति प्रभाऊ संतत बहे त्रिविध बाऊ, जनु विहार वाटिका निभ्र पंचबान की। इस वर्णन से इस बात का इशारा मिलता है कि गोस्वामी जी ऋतु वर्णन करने में ऋति ग्रंथों में गिनाई वस्तुओं तक ही नहीं रहते हैं। वे अपनी आँखों से भी पूरा काम लेते हैं। ऋतुपति की शोभा के भीतर केवल ऋति पर चलने वाले मोर नहीं लाया करते हैं। पर तुलसीदास जी ने उनकी बोली नहीं बंद की, केवल पद्धति का अनुसरण करने वाले कवि वर्षा काल में कोकिल को मौन कर देते हैं। पर तुलसीदास अपने कानों की कहाँ तक उपेक्षा करते हैं। वे गीतावली के उत्तराकांड में हिंडोले के प्रसंग में वर्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं, दादुर मुदित भरे सरित सर, मही उमग जनु अनुराग, पीक मोर मधुप चकोर चातक सोर उपवन बाग। पृष्ठ 90। उपमा उत्प्रेक्षा दृष्टांत आदि के साथ गुथे वर्णन भी बहुत से हैं, पर उनमें वस्तुओं और व्यापारों का उल्लेख बहुत पूर्ण है। चित्रकूट की वस्तुओं और व्यापारों को लेकर उन्होंने होली का उत्सव खड़ा किया है। आजु बन्यो है विभिन्न देखो राम धीर, मानो खेलत फागु मुद मदन बीर, बट बकुल कदम्ब पनस रसाल, कुसुमित तरु निकर कूरव तमाल, मानो विविध वेश धरे छैल जूत, बीच बीच लता ललना बरूथ, पन बानक निर्झर अली उपंग, बोलत परावत मानो डफ मृदंग, गायक सुख कोकिल झिल्ली ताल, नाचत बहुभाति बरही मराल। पर उनकी यह उत्प्रेक्षा भी उल्लास सूचक है। इसी प्रकार भागवत के दृष्टांत उदाहरण लेकर उन्होंने किष्किंधा कांड में वर्षा और शरद का वर्णन किया है, जिससे प्रस्तुत वस्तु और व्यापार दृष्टांतों के सामने दबे से हैं। श्रोता या पाठक का ध्यान वर्ण वस्तुओं की ओर जमने नहीं पाता। फिर भी जहाँ जहाँ स्थल वर्णन का अवसर आया है, वहाँ वहाँ उन्होंने वस्तुओं और व्यापारों का प्रचुर उल्लेख करते हुए विस्तृत वर्णन किया है। केशवदास के समान नहीं किया है कि पंचवटी का प्रसंग आया तो बस, सब जाति फटी दुख की दुबरी करके और अपना ही अश्लेष चमत्कार दिखाकर चलते बने। शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेव बड़े निब की जनू लसे, श्रीफल भूरी भाव जहाँ लसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे। अब कहिए इसमें श्रीफल बेर और अर्क पदों के श्लेष के सिवा और क्या है, चित्रण क्या? यह तो वर्णन भी नहीं है, इसमें हृदय का तो कहीं पता ही नहीं है। क्या बेर को देखकर भयानक प्रलय काल की ओर ध्यान जाता है और आक को देख प्रलय काल के अनेक सूर्यों की ओर? इससे तो साफ झलकता है कि पंचवटी के वन दृश्य से केशव के हृदय का कुछ भी सामंजस्य नहीं है। उस दृश्य से उनके हृदय में किसी प्रकार के भाव का उदय नहीं हुआ। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों ने वृक्षों आदि के उल्लेख में देश का पूरा ध्यान रखा है। जैसे हिमालय के वर्णन में भुर्ज, देवदारू आदि, और दक्षिण के वर्णन में एला, लवंग, ताल, नारिकेल, पुंगी फल आदि का उल्लेख है। गोस्वामी जी ने भी देश का ध्यान रखा है। चित्रकूट के वर्णन में कहीं एला, लवंग, पुंगी फल का नाम वे नहीं लाए हैं, पर केशवदास जी मगध के पुराने जंगल के वर्णन में वृक्षों के जो नाम याद आए हैं, उन्हें अनुप्रास की बहार दिखाते हुए जोड़ते चले गए हैं।